कृपा सामने साक्षर शुभ्रखा का अंग भंग होने के बाद वे खरदूषी के पास गई है, मुख्यतः घर के पास जाके सारी घटना सुनाती है। घर सबसे पहले 14 राक्षसों को भेजता है, जाओ उन दोनों का हनन कर दो। भगवान राम अकेले हैं, 14 राक्षस लक्ष्मण को सीता की रक्षा के लिए आदेश देते हैं। स्वयं 14 राक्षसों के साथ युद्ध करते हैं, उनका हनन कर देते हैं। शूर्पणखा ये सब कुछ देख रही है, पुनः घर के पास गई है। खरदूषी त्रिश्र तीनों 14,000 राक्षसों के साथ पुनः प्रभु राम के सामने आए हैं। लक्ष्मण से कहते हैं, तुम फिर सीता की रक्षा करना, मैं अकेला ही जाऊंगा। खरदूषण और त्रिश्र और 14,000 राक्षसों का हनन होने के बाद अकंपन जाके रावण को ये सब सूचना देता है। तेरे जैसे बलवान खरदूषण त्रिश्र तीनों का हनन कर दिया अकेले राम ने। भारत भूमि पर राजा दशरथ के ये दो पुत्र हैं, सारी कथा सुनाता है। सब कुछ सुनने के बाद क्रुद्ध होके बदले की भावना से मरीच के पास पहुंचता है। इसलिए देखें विधि का विधान किस प्रकार से काम करता है। भगवान जो चाहता है, परमेश्वर ने जो रच रखा है, उसी के अनुसार सबकी बुद्धि को बना देता है। सबकी बुद्धि उसी प्रकार बन जाती है। सीता हरण की बात सबसे पहले अकंपन ने सजेस्ट की है रावण को। कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, लेकिन जो बात घटित होनी है, जो परमेश्वर चाह रहा है कि इस प्रकार से होना चाहिए, उसी की बातचीत आज अकंपन के मुख से कहला दी है। उसी की तैयारी के लिए मरीच के पास आए हैं, आके उन्हें सारी योजना बताते हैं। ऐसा कर, मैं सीता का हरण कर लूंगा, राम उसके वियोग में अपने आप मर जाएगा, हमें बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मरीच समझाता है, रावण लौट जाता है वापस। शूर्पणखा आई है, आके रावण को उकसाया है, भड़काया है। अब रावण पूरी तैयारी से चले हैं, अब ना मानने की स्थिति पे चले हैं। पुनः मरीच के पास आए हैं, आज उससे डराया है, धमकाया है और तैयार कर लिया है। आप पढ़ोगे आगे मरीच क्या करता है। खरदूषण एवं त्रिष्टा देवी सज्जनों, आध्यात्मिक दृष्टि से मन की तीन वृत्तियां हैं, खरदूषण एवं त्रिष्टा। खर और दूषण, दूषण कैसा है? खर तो गधे को कहते हैं, ये वृत्ति हमारे मन में है। गधे को पता नहीं होता कि उसके ऊपर चंदन लादा हुआ है या गोबर, उसका एक ही काम होता है, चीज को ढूंढना है। इसको खर वृत्ति कहा जाता है, मन की एक वृत्ति खर वृत्ति। दूषण वृत्ति साधक जन जिसकी कल से चर्चा चल रही है, दूसरों में दोष देखने की वृत्ति। इस वृत्ति का एक अनोखा सा स्वभाव है, दूसरों के दोष देखने वाला व्यक्ति कभी अपने दोष नहीं देख सकता। आप सब अनुभवी बैठे हो, आपके अनुभव में भी ये बात आई होगी। जब हम दूसरों के दोष देखते हैं तो अपने आप निर्दोष मानते हैं, अपने आप में कोई दोष दिखाई नहीं देता। मानो उंगली दूसरों की तरफ तो उठती है, अपनी ओर मुड़ती हुई मुड़ी हुई उंगलियां दिखाई नहीं देती। संत महात्मा समझाते हैं ना, आप सबको पता है, आप किसी की ओर एक उंगली उठाते हो तो तीन उंगलियां आपकी ओर मुड़ी हुई होती हैं, संकेत देती हैं, तो अपनी तरफ तो सारा झांक। लेकिन व्यक्ति झांक नहीं सकता, ऐसा कर नहीं सकता। ये दूषण वृत्ति का एक स्वभाव है इस प्रकार का। भगवान श्री दूषण को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। चमत्कार देखिएगा, भगवान का 14,000 राक्षस दूषण घर तृष्णा सब इकट्ठे हुए हुए हैं। घर दूषण तृष्णा के साथ वे स्वयं लड़ेंगे, लेकिन 14,000 के साथ लड़ते लड़ते बहुत देर हो जाती है। तब तक खरदूषण उतने ही बलवान है जितने रावण। वह क्या कर डालते कुछ कह नहीं जा सकता। प्रभु राम का चमत्कार देखिएगा, वह दूषण वृत्ति को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। दूषण वृत्ति का स्वभाव बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इन्हें अपने अंदर कोई दोष दिखाई नहीं देता। मानो अपनी ओर इनकी दृष्टि नहीं मुड़ती, सामने वाला तो दिखाई देता है लेकिन अपनी ओर इनकी दृष्टि नहीं मुड़ती। भगवान ने 14,000 राक्षसों को अपना रूप दे दिया, सबको राम बना दिया। सामने वाला राम दिखाई दे रहा है और वह शत्रु, स्वयं भी राम है यह दिखाई नहीं दे रहा। क्यों? ऐसा उनका स्वभाव नहीं है, अपनी ओर देखना उनका स्वभाव नहीं है। अपनी ओर तीन उंगलियां मुड़ी हुई हैं, ये देखना स्वभाव नहीं है। अतः 14,000 राक्षस अपने आप में लड़के तो मर गए, उनके लिए भगवान को कुछ नहीं करना पड़ा। सामने राम खड़ा है, राम शत्रु है, पर दोष दृष्टि वाला व्यक्ति देवियों सज्जनों ठीक इसी प्रकार से मृत्यु को प्राप्त होता है, पतन को प्राप्त हो जाता है अपने आप, किसको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसी घातक वृत्ति है। तीसरा, काम क्रोध एवं लोभ, ये सब मन की वृत्तियां हैं, खर दूषण एवं तृष्णा। काम क्रोध एवं लोभ से आप परिचित हो सज्जनों, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। ऐसे स्वभाव वाले व्यक्ति खर दूषण एवं तृष्णा, ऐसे स्वभाव वाले व्यक्तियों को बड़े मूडी कहा जाता है। मूडी स्वभाव के होते हैं, थोड़ी देर के लिए अच्छे बन जाते हैं और असलियत तो जो होती है वह होती ही है। सोचते कुछ, कहते कुछ और करते बिल्कुल भिन्न। ऐसी वृत्ति तृष्णा, मूडी व्यक्ति, कथनी कुछ है, करनी कुछ है, सोच कुछ है, ऐसी वृत्ति को तृष्णा वृत्ति कहा जाता है। सबकी सब घातक वृत्तियां हैं। आज रावण, आगे पढ़ोगे आप, मरीच की कोई सुनने को तैयार नहीं, कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। जब साधक चुनो कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति पर पहुंच जाए कि अपने हितेशी की भी न सुने, तो समझ लीजिएगा दुर्दिन आने वाले हैं। कभी कभी पत्नी बहुत समझाती है, ये शब्द पुरुष को अच्छा नहीं लगता, ये कौन होती है मुझे समझाने वाली। इसलिए देवियों, आपके हित की बात कहता हूं, कभी अपने पतियों के लिए इस प्रकार की बात न सुनना। पुरुष ये बात सुन नहीं सकते। प्रार्थना करना, मैं प्रार्थना करती हूँ, मेरा स्वभाव, मैं इस प्रकार से आपसे, मेरा सुझाव है, मेरा परामर्श है, कभी ऐसा शब्द प्रयोग न करना कि मैं आपको समझाती हूँ, ये पुरुष सहन नहीं करते। हमारी कमजोरी है। आज मरीच की बात पर कान नहीं धर रहे रावण, तो समझ लीजिएगा कि कुछ अनर्थ अनिष्ट होने वाला है। मंदोदरी की बात नहीं सुनी, बाली ने तारा की बात नहीं सुनी, तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकले, क्या परिणाम आप सबको विदित है। रावण के साथ भी ऐसा ही होने जा रहा है। कल की चर्चा साधकजनों ने छोड़ी थी भरतजी महाराज की, चित्रकूट में भरतजी महाराज कहते हैं, मात्र मेरे राज्य की बात चली प्रभु, मैं राज सिंहासन पर बैठा नहीं, मेरी चर्चा चली, मेरे लिए निर्णय हुआ कि इसे राजगद्दी पर बैठना है, मैं बैठा नहीं। मात्र चर्चा से अयोध्या में इतनी हलचल मच गई, पिताश्री की मृत्यु हो गई, सुरलोक को पधार गए, सारी अयोध्या बहुत बेचैन, आप जी को जिनको राज्य सिंहासन पर बैठना था वे इस वक्त जंगल में घूम रहे हैं, किसके कारण, मेरे कारण। भरत जी कहते हैं, प्रभु यदि मेरे जैसा पापी व्यक्ति कभी राज्य सिंहासन पर बैठ जाएगा जो आपका है, तो धरती रसातल को उचली जाएगी। कल यही बात चल रही थी। प्रभु राम कहते हैं, भरत यदि तू सिंहासन पर न बैठा तो मैं यकीनन कहता हूं कि धरती जो है वह रसातल को उचली जाएगी। कौन सत्य है, कौन सही है, दोनों इस बात पर अड़े हुए हैं कौन सत्य है। आइए साक्षियों आगे की बात देखते हैं। भरत जाके चित्रकूट में, मैंने आपसे अर्ज की थी, चित्रकूट पे एक वैचारिक युद्ध हुआ है, विचारों का युद्ध है, तो चित्त की भूमि, प्रेम भूमि, मिलन भूमि, प्रेम ही प्रेम छाया हुआ है इस वक्त भरत के आगमन पर, पहले भी था लेकिन भरत के आगमन पर तो सर्वत्र प्रेम छा गया है, प्रेम का साकार रूप भरत। कोई पूछे प्रेम की शक्ल क्या है, प्रेम की अकल क्या है, कैसा दिखाई देता है, तो संत महात्मा कहते हैं, भरत जी को देख लीजिएगा, इन्हीं जैसा है प्रेम। सोचें कितने महान हैं भरत जी महाराज, जिनकी तुलना इतने बड़े गुण के साथ की जा रही है। साक्षात प्रतीक प्रेम के भरत जी महाराज, सर्वत्र प्रेम छाया हुआ है चित्रकूट में, वहां चर्चा चल रही है। मुझ जैसा पापी कोई नहीं, मुझ जैसा अधम कोई नहीं, मेरे कारण सारा अनर्थ हुआ है, काश मैंने अपनी कुमाता की कोख से जन्म ना लिया हुआ होता तो ये अनर्थ न होता, आपको जंगल में ना आना पड़ता, इस वक्त आप रहस्यहस पर बैठे हुए होते और मैं आपके श्री चरणों में बैठ के तो आनंदित महसूस करता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ मेरे कारण। मुझ जैसा पापी, मुझ जैसा अधम, मुझ जैसा दीनहीन कौन होगा। भगवान राम कहते हैं, भरत भगवान शिव को साक्षी रख के कहता हूं, तीन लोक में त्रिकाल तुझ जैसा पुण्य आत्मा कोई नहीं है, जितने भी पुण्य आत्मा आज तक हुए हैं वे सब तुमसे छोटे हैं, सब तुमसे हीन हैं, सब तुमसे नीचे हैं। यदि तुम मुझे सत्यवादी मानते हो तो आज के बाद मेरे से वायदा करो कि कभी अपने आप को पापी न कहोगे। क्या भरत सत्यवादी नहीं? प्रश्न उठता है, यदि राम सत्यवादी हैं तो क्या भरत सत्यवादी नहीं? भरत कहते हैं, महाराज आप सत्यवादी हैं इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मैं भी असत्यवादी तो नहीं हूं, मैं भी सत्यवादी हूं। मैं दावे से कहता हूं, आपको आपके अंदर दूसरों के दोष देखने वाली दृष्टि ही नहीं है तो आप दोष कहां देखोगे? इसलिए आपको दोष दिखाई नहीं देते, इसलिए आप मुझे गुणी कह रहे हो। ठीक है भरत, प्रभु राम कहते हैं ठीक है, मेरे अंदर दूसरों के दोष देखने की दृष्टि नहीं है, तुम ठीक कहते हो, लेकिन दूसरों के गुण देखने की दृष्टि तो है ना। मैं उसी दृष्टि से कह रहा हूं कि तुम जैसा गुणी इस संसार में न कोई हुआ है न कोई होगा। भरत जी महाराज प्रभु राम के चरण पकड़ते हैं, कहते हैं महाराज एक बात बताइए, तोता कभी कभी गीता जी का पाठ कर लेता है या राम राम बोल लेता है? बंदर भरी सभा में सबके सामने नाचने लग जाता है, तो इस पे तोते का भड़प्पन है या बंदर का बड़प्पन है या उनको पढ़ाने सिखाने वाले का बड़प्पन है? राम जी कहते हैं भरत, तोते को पढ़ाने वाले का बड़प्पन और मदारी का बड़प्पन जिसने बंदर को नाचना सिखाया। तो महाराज मेरे अंदर यदि कोई गुण आपको दिखाई देता है तो यह चमत्कार आपका है, मेरा चमत्कार नहीं है। ये आपका चमत्कार है महाराज, आप दूषण को भी भूषण बना देते हो जैसा आप मुझे वर्णन कर रहे हैं, मेरा इसमें कुछ नहीं है, मेरे अंदर तो दोष ही दोष है। यदि किसी को भी कोई गुण दिखाई देता है मेरे अंदर तो वह चमत्कार आपकी कृपा का है, मेरा नहीं है। क्यों? मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं अपने आप को कि मेरे अंदर किसी प्रकार का कोई गुण नहीं है, मैं दोषों से ही भरा पड़ा हूं। कैसी कृपा है भरत जी महाराज के ऊपर। कहते हैं दिव्य सज्जनों, अपने गुण सुनते थे, जगह जगह पर संतों महात्माओं ने उनके गुणों का बखान किया है। कहीं पर भी गए, त्रिवेणी संगम पर गए, वहां त्रिवेणी ने कहा, गंगा यमुना सरस्वती तीनों ने मिलकर कहा, त्रिवेणी ने कहा, भरत जो तुम मुझसे मांग रहे हो वह तो मुझे तुमसे मांगना चाहिए, जो प्रेम तुम मुझसे मांग रहे हो वह प्रेम, तू प्रेम का भंडार है, तू प्रेम का स्रोत है, वह तुझसे मांगना चाहिए। मानो हर जगह पर भरत जी महाराज की प्रशंसा ही प्रशंसा हुई है। कहीं पर भी देवियों सज्जनों वर्णन इस प्रकार का आता है, भरत जी महाराज को कहीं अपनी प्रशंसा सुनाई नहीं दी, उनको यही सुनाई देता था मेरे रघुपति सरकार की प्रशंसा हो रही है। कैसे कान उनकी बुद्धि की पवित्रता के कारण, उनके कान किस प्रकार के, कितने सुंदर कान उनके हो गए हुए थे, उन्हें अपनी प्रशंसा न सुनाई दे के तो सब कुछ यही सुनाई देता था कि मेरे स्वामी की प्रशंसा हो रही है, रघुपति राघवेंद्र सरकार की प्रशंसा हो रही है। तो साधुक्षण उस समय हो गया है, यहीं इस प्रसंग को समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद।